मैं जितेंद्र कुमार, बीए द्वितीय वर्ष, भारत का संविधान एक परिचय द्वारा डॉक्टर दुर्गादास बसु के अंतर्गत विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का वितरण की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। संघ की प्रकृति। हमारे संविधान द्वारा स्थापित परिसंघ प्रणाली की प्रकृति को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इसके आवश्यक लक्षणों पर पुनः दृष्टिपात करने पर निम्नलिखित बातें सम्मुख आती हैं। इसमें एकता की ओर झुकाव बहुत अधिक है तथा पारंपरिक परिसंघीय स्कीम के बहुत से अपवाद हैं। फिर हमारे देश के शासन के आधारभूत ढांचे के रूप में संविधान ने परिसंघीय प्रणाली अपनाई है। 2000 के अंत तक संघ में 28 राज्य हैं और संघ तथा राज्य दोनों ही संविधान से प्राधिकार प्राप्त करते हैं। संविधान ने विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय इन सभी शक्तियों का विभाजन इनके बीच किया है। जैसा हम पहले बता चुके हैं, न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है। परिणाम यह है कि राज्य संघ के प्रत्यायोजिती नहीं है। संघ के पास बहुत से अभिकरण और युक्तियां ऐसी हैं जिनके द्वारा अनेक विषयों में राज्य पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन अपवादों के अधीन रहते हुए राज्य संविधान द्वारा आवंटित अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संघ और राज्य दोनों समान रूप से संघ द्वारा अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन हैं। उदाहरण के लिए विधायी शक्ति का प्रयोग मूल अधिकारों द्वारा मर्यादित है। ना तो संघ विधानमंडल और ना ही राज्य विधानमंडल विधिक अर्थ में प्रभुत्व संपन्न है। प्रत्येक की संविधान के उपबंधों द्वारा बनाई गई परिसीमाएं हैं। ये उपबंध उनके बीच विधायी शक्तियों का विवरण करते हैं। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार और कुछ अन्य विनिर्दिष्ट उपबंध भी कुछ विषयों में उनकी शक्ति को निबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 276 क्लॉज 2 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की किसी वृत्ति पर कर अधिरूपित करने की शक्ति की सीमा और अनुच्छेद 303 के तहत व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विधान के बारे में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की शक्तियों की सीमा। यदि इन संवैधानिक मर्यादाओं में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संप्रयुक्त विधानमंडल की विधि को न्यायालय अवधिमान्य घोषित कर सकता है। विधायी शक्ति के वितरण की स्कीम। जैसा प्रारंभ में बताया गया है कि परिसंघ प्रणाली में परिसंघ और इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है। प्रत्येक देश की स्थानीय परिस्थितियों और राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुसार यह वितरण अलग अलग होता है। वितरण दो प्रकार से होता है। क, वह राज्य क्षेत्र जिस पर परिसंघ और इकाइयां अपनी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। ख, वे विषय जिन पर उनकी अधिकारिता का विस्तार होता है। हमारे संविधान में इन दोनों शीर्षों के अधीन विधायी शक्ति का वितरण इस प्रकार है। संघ और राज्य के विधानमंडल का राज्य क्षेत्रीय विस्तार। विधानमंडल किसी राज्य क्षेत्र की बाबत विधान बना सकेगा। इस बारे में संभवतः राज्य विधानमंडल कुछ मर्यादा के अधीन है जिसके अधीन संसद नहीं है। उदाहरण के लिए संघ का राज्य क्षेत्र राज्यों के बीच विभाजित है, इसलिए प्रत्येक राज्य की अधिकारिता उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित होनी चाहिए। जब कोई राज्य का विधानमंडल अपनी शक्ति के भीतर आने वाले किसी विषय पर विधि बनाता है तो यह समझा जाना चाहिए कि वह उस राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति ही निर्देश कर रहा है। राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। अनुच्छेद 245 क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल अपनी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता का किसी भी परिस्थिति में विस्तार नहीं कर सकता। इसका विस्तार तभी हो सकता है जब संसद के अधिनियम द्वारा राज्य की सीमाएं बढ़ा दी जाएं। संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। इसमें न केवल राज्य आते हैं बल्कि संघ, राज्य क्षेत्र या ऐसा कोई क्षेत्र भी आ जाता है जो तत्समय भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है अनुच्छेद 246 क्लॉज 4 के अंतर्गत। उसे राज्य क्षेत्रातीत विधान बनाने की शक्ति भी है अनुच्छेद 245 क्लॉज 2 के अंतर्गत। यह किसी शक्ति राज्य विधानमंडल को नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों को शासित करेंगी बल्कि विश्व के किसी भाग में भी निवास करने वाले भारत की प्रजा और उनकी वहां स्थित संपत्ति को लागू होंगी। भारत में राज्य के विधानमंडलों द्वारा अपने राज्य की सीमाओं के बाहर व्यक्तियों या संपत्ति को प्रभावित करने का शक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है। संसद की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की परिसीमाएं। संसद की व्यापक राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता संविधान के कुछ विशेष उपबंधों के अधीन है। 1. अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों का वही बल होगा जो संसद के अधिनियमों का होता है और ऐसे राज्य क्षेत्र के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि को निरसित या संशोधित कर सकते हैं अनुच्छेद 240 क्लॉज 2 के अंतर्गत। 2. राज्यपाल संसद के किसी अधिनियम को किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने से अधिसूचना द्वारा वर्जित कर सकता है या उपांतरित कर सकता है। 5वीं अनुसूची का पैरा 5। 3. असम का राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम असम राज्य के किसी स्वशासित जिले को या किसी स्वशासित क्षेत्र को लागू नहीं होगा या ऐसे जिले या क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। 6वीं अनुसूची का पैरा 12 ए ख के अंतर्गत मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जिले या स्वशासित क्षेत्र के बारे में इसी प्रकार का अधिकार 6वीं अनुसूची के पैरा 12 क और 12 ख द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। यह स्पष्ट है कि पूर्वगामी विशेष उपबंध विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के पिछड़ेपन को देखते हुए अंतः स्थापित किए गए हैं क्योंकि साधारण व्यक्तियों को वहां लागू करने से गतिविधियों को लागू करने से कठिनाई हो सकती है या उसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। विधायी विषयों का वितरण। विषयों के वितरण के बारे में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का 3 प्रकार से वितरण किया है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों का एक ही प्रगणन किया गया है। केवल परिसंघ विधानमंडल की शक्तियां गिनाई गई हैं। कनाडा में दोहरा प्रगणन है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 प्रगणन थे अर्थात परिसंघीय, प्रांतीय और समवर्ती। संविधान ने 1935 के अधिनियम से यह स्कीम ले ली और विधान के सभी संभावित विषयों को संविधान की सूची 7 में 3 विधायी सूचियों में विभाजित कर दिया। सूची 1 या संघ सूची में 99 मद या विषय ऐसे हैं जिन पर संघ को विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। इसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, बैंक कार्य, बीमा, करेंसी, सिक्के, संघ के शुल्क और कर हैं। सूची 2 या राज्य सूची में 61 मदे या प्रविष्टियां हैं जिन पर विधान बनाने की अनन्य शक्तियां राज्य विधानमंडल को हैं। इनमें हैं लोक व्यवस्था और पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, कृषि, वन, मत्स्यिकी, राज्य के कर और शुल्क। सूची 3 संघ और राज्य के विधानमंडल को 52 मदों पर समवर्ती शक्ति प्रदान करती है जैसे दांडिक विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, संविदा, अपकृत्य, न्यास, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना तथा शिक्षा। तीनों सूचियों में परस्पर व्याप्ति होने की दशा में संघ विधान मंडल को उसी प्रकार प्रधानता दी गई है जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में थी। राज्य विधान मंडल की राज्य सूची में प्रगणित विषयों पर विधान बनाने की शक्ति संसद की संघ सूची और समवर्ती सूचियों में प्रगणित विषयों की बाबत विधान बनाने की शक्ति के अधीन है। राज्यों की सूची की प्रविष्टियों का निर्वचन तदनुसार किया जाएगा। समवर्ती क्षेत्र में एक ही विषय पर संघ और राज्य की विधि में विरोध होने की दशा में ही संघ की विधि अभिभावी होती है। यदि राज्य की विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर अनुमति मिल गई है तो वह विधि उस राज्य में अभिभावी होगी, किंतु संसद पश्चातवर्ती विधान द्वारा राज्य विधि का अध्यारोहण कर सकती है अनुच्छेद 254 के क्लॉज 2 के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियाँ। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के निहित करने के बारे में कनाडा के पूर्व दृष्टांत का अनुसरण किया गया है। हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को दी गई हैं, राज्यों को नहीं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यह शक्ति राज्यों को है। इस विषय में संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर है। उस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ ना तो परिसंघ में निहित थी न ही राज्य विधान मंडल में, किंतु वे गवर्नर जनरल के हाथों में थी। संविधान अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो सूचियों में से किसी में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की शक्ति संविधान मंडल में निहित करता है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। कोई विशिष्ट विषय अवशिष्ट शक्ति के अधीन आता है या नहीं इस बात का उदाहरण न्यायालय करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि ये तीनों सूचियां विध्यायन के सभी संभव विषयों को निष्कारी रूप से प्रगणित करती हैं। न्यायालय इन प्रगणित विषयों की परिधि का निर्वचन उदारता से करते हैं। परिणामतः अवशिष्ट शक्ति के लागू किए जाने का क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में संघ की विधायी शक्ति का विस्तार। ऊपर जो कहा गया है वह विधायी शक्तियों के प्रसामान्य वितरण का वर्णन है। कुछ अपवादिक परिस्थितियां हैं जिनमें वितरण की उपरोक्त प्रणाली निलंबित हो जाती है और संघ की संसद की शक्ति राज्य के विषयों पर छा जाती है। ये अपवादिक और असाधारण परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। क, राष्ट्रीय हित। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प से यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति हो तो एक अस्थायी अवधि के लिए संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों की बाबत विधि बनाने की शक्ति होगी। ऐसे प्रत्येक संकल्प से प्रश्नगत विधि को 1 वर्ष की अवधि मिलती रहेगी। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद ऐसे संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवा प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। राज्यसभा के संकल्प को एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। ख, आपात की उद्घोषणा के अधीन। जब राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद को राज्य के विषयों की बाबत विधान बनाने की ऐसी ही शक्ति होगी। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवा प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या न करने का लोप किया गया है अनुच्छेद 250 के अंतर्गत। ग, राज्यों के बीच करार द्वारा। यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प करते हैं कि संसद के लिए उन राज्यों के संबंध में राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय की बाबत विधि बनाना विधिपूर्ण होगा तो संसद को ऐसे राज्यों के बारे में ऐसी शक्ति होगी। कोई अन्य राज्य राज्य के विधानमंडल में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा संघ के ऐसे विधान को अपने लिए अंगीकार कर सकेगा। संक्षेप में यह राज्य के विधानमंडलों की सहमति से संसद की अधिकारिता का विस्तार है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। जैसे संसद को कृषि भूमि की बाबत संपदा शुल्क अधिरोपित करने की क्षमता नहीं है, किंतु संसद ने संपदा शुल्क अधिनियम 1953 में कुछ राज्यों में स्थित किसी भूमियों को सम्मिलित कर लिया था। यह अनुच्छेद 252 के अधीन ऐसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्पों के आधार पर किया गया था जिनमें संसद को ऐसी शक्ति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम अब निरस्त हो गया है। इस प्रकार के विधान के अन्य उदाहरण हैं पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनिमयन अधिनियम 1976, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। घ संघियों को क्रियान्वित करने के लिए संसद को किसी संधि अंतर्राष्ट्रीय करार या अभिसमय के प्रयोजन के लिए किसी विषय की बाबत विधान बनाने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को क्रियान्वित करने के लिए विधान बनाने में संसद के मार्ग में शक्तियों का प्रसामान्य वितरण बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, चाहे ऐसा विधान राज्य के विषय के संबंध में ही क्यों ना हो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। ऐसे विधान के उदाहरण हैं जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम 1960, यान हरण निवारण अधिनियम 1982, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ अधिनियम 1947। अंग राज्य में संविधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा के अधीन, जहाँ राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा की जाती है वहाँ राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाएगा अनुच्छेद 356 क्लॉज 1 के ख के अंतर्गत। विधायी सूचियों का निर्वचन, न्यायालयों के लिए इन तीन विधायी सूचियों की 200 से अधिक प्रविष्टियों का निर्वचन कोई सरल काम नहीं है। न्यायालयों को विभिन्न प्रविष्टियों में समन्वय करने के लिए अनेक न्यायिक सिद्धांतों को लागू करना पड़ता है, उन सब पर विचार करना इस पुस्तक की परिधि के बाहर है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रत्येक प्रविष्टि को उसके शब्दों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य प्रविष्टि को व्यर्थ ना करते हुए अधिक से अधिक व्यापक महत्व दिया जाता है। यह अवधारित करने के लिए कि कोई विशिष्ट अधिनियमित किसी प्रविष्टि में आती है, यह अधिनियमिति का सार और तत्व जाना चाहिए। उस पर लगाए गए विधायी नामपट पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि अधिनियमिति सारवान रूप से ऐसी प्रविष्टि के अधीन आती है जिस पर विधानमंडल की अधिकारिता है और आनुषंगिक रूप से ऐसी प्रविष्टि में वह प्रवेश करती है जिसके बारे में वह सक्षम नहीं है, तो इससे विधि अविधि मान्य नहीं हो जाएगी। दूसरी ओर जब विधानमंडल को किसी विषय के बारे में विधान बनाने की शक्ति नहीं है तो न्यायालय ऐसे विधानमंडल को अपनी शक्ति के बाहर जाकर या किसी अन्य विधि की शक्ति पर अधिक्रमण करके कोई अन्य युक्ति या आभासी विधान बना ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। विधानमंडल ने विधायी शक्ति की संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है या नहीं यह आधारित करने के लिए विधानमंडल के उद्देश्य पर विचार करना असंगत है। कार्यपालिका शक्ति का वितरण, संघ और राज्य के बीच कार्यपालिका शक्ति का वितरण विधायी शक्तियों के वितरण की अपेक्षा अधिक जटिल है। साधारणतः यह वितरण विधायी शक्तियों के वितरण की स्कीम का अनुसरण करता है। परिणाम स्वरूप राज्य की कार्यपालिका शक्ति मुख्यतः विधायी शक्ति के समान विस्तारवान है। इसका यह अर्थ हुआ कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अपने राज्य क्षेत्र पर होगा और ऐसे विषयों की बाबत होगा जिन पर उनकी विधायी क्षमता है अनुच्छेद 162 के अंतर्गत। इसके विपरीत संघ की निम्नलिखित विषयों पर अनन्य कार्यपालिका शक्ति होगी। क, उन विषयों पर जिनकी बाबत संसद को विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, अर्थात 7वीं अनुसूची 1 के विषय, और ख, किसी संधि या करार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 73 के द्वारा। दूसरी ओर राज्य को सूची 2 में सम्मिलित सभी विषयों पर अनन्य विधायी शक्तियाँ होंगी अनुच्छेद 162 के अंतर्गत। समवर्ती क्षेत्र में वितरण के संबंध में कुछ नवीनता हैं। समवर्ती विधायी सूची में सम्मिलित विधायी शक्ति की बाबत सामान्यतः कार्यपालिका शक्ति राज्यों को होगी, किंतु संविधान या संसद की किसी विधि के संघ को अभिव्यक्त रूप से ऐसे कृत्य प्रदत्त करने वाले उपबंधों के अधीन रहते हुए ही राज्यों को शक्ति मिलेगी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन केंद्र को प्रांतीय कार्यपालिका को समवर्ती विषय से संबंधित केंद्रीय विधि के क्रियान्वयन के लिए निर्देश देने की शक्ति थी, किंतु निर्देश देने की यह शक्ति निष्प्रभावी साबित हुई। इसलिए संविधान में यह उपबंध किया गया कि संघ यदि ठीक समझे तो समवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि का प्रशासन स्वयं कर सकेगा। परिणाम स्वरूप समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यपालिका शक्ति राज्यों के पास है। इसके 2 अपवाद हैं। क, जब ऐसे विषय से संबंधित संघ की विधि कोई कार्यपालिका कृत्य को विनिर्दिष्ट रूप से संघ में निहित करती है, उदाहरणार्थ भूमि अर्जन अधिनियम 1894, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, अनुच्छेद 73 क्लॉज 1 का, परंतु क, इन संघ विधियों में विनिर्दिष्ट कृत्यों की बाबत कार्यपालिका शक्ति संघ को होगी, राज्य को नहीं, अन्य विषयों की बाबत कार्यपालिका शक्ति राज्यों में ही होगी। ख, जहां संविधान के उपबंध को कार्यपालिका कृत्य संघ को सौंपते हैं, जैसे किसी संधि या अंतर्राष्ट्रीय करार को क्रियान्वित करने की कार्यपालिका की शक्ति अनन्यता संघ को है, चाहे वह विषय संघ राज या समवर्ती सूची में हो, अनुच्छेद 73 क्लॉज 1 के ख के अंतर्गत। संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कुछ विषयों में राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति है। ये विषय हैं, प्रसामान्य समय में उस राज्य में लागू संघ विधि और विद्यमान विधियों के सम्यक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करता है, अनुच्छेद 257 क्लॉज 1 के अंतर्गत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों का राज्य द्वारा निर्माण किया जाएगा और उन्हें बनाए रखा जाएगा, अनुच्छेद 257 क्लॉज 2 के अंतर्गत। राज्य के भीतर रेलों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 257 क्लॉज 3 के अंतर्गत। निर्देशों में विनिर्दिष्ट ऐसी स्कीमों को बनाने और निष्पादन के लिए जो राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक समझे, अनुच्छेद 339 क्लॉज 2 के अंतर्गत। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 350 का 2 के अंतर्गत। हिंदी भाषा का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। आपात में आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ की शक्ति का विस्तार यह निर्देश देने के लिए भी किया जाता है कि किस प्रकार किसी विषय के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 353 क के अंतर्गत, जिससे राज्य सरकार को निलंबित किए बिना पूर्णतः संघ के नियंत्रण में लिया जाता है। राज्य में संविधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा पर राष्ट्रपति राज्य की समस्त या किन्हीं कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथ में ले सकेगा, अनुच्छेद 356 क्लॉज 1 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के दौरान वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए जो निर्देशों के अनुसार भी निर्दिष्ट किया जाएगा अनुच्छेद 360 क्लॉज 3 के अंतर्गत। राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों की कमी करने के लिए अनुच्छेद 360 क्लॉज 4 के ख के अंतर्गत। धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित करने की अपेक्षा करना अनुच्छेद 360 क्लॉज 4 के अंतर्गत। विधायी शक्तियों के बारे में संघ अनुच्छेद 252 को छोड़कर और राज्य को पारस्परिक सहमति से एक दूसरे की अनन्य अधिकारिता का अतिक्रमण करने की क्षमता नहीं है, किंतु यह कार्यपालिका शक्ति के बारे में संभव हो सकता है। जैसे किसी राज्य की सरकार की सहमति से संघ किसी विषय से संबंधित अपने कार्यपालिका कृत ऐसे राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है अनुच्छेद 258 क्लॉज 1 के अंतर्गत। इसके विपरीत संघ सरकार की सहमति से राज्य सरकार उसे अपनी कार्यपालिका कृत सौंप सकती है अनुच्छेद 258 क के अंतर्गत। अनुच्छेद 258 क्लॉज 2 के अधीन संसद द्वारा संघ के विषय में बनाई गई विधि केंद्रीय सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकती है कि वह राज्य सरकार अपने कार्य या कृत राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दे ऐसी राज्य सरकार की सम्मिलित किए बिना। धन्यवाद।